नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से वार्ता की। आपसी सहयोग बढ़ाने के कई समझौतों पर हस्ताक्षर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श किया। जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक आज नई दिल्ली में होगी। मौसम विभाग का अगले चार दिन में केरल, कर्नाटक और गोवा में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी की आशंका। तुर्की में अंताल्या में तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत की ज्योति सुरेखा वेणम, परनीत कौर और अदिति स्वामी ने कंपाउंड टीम का स्वर्ण पदक जीता। और T20 विश्व कप क्रिकेट में अपने दूसरे सुपर 8 मुकाबले में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और बांग्लादेश के बीच आज कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। इन समझौतों में डिजिटल और हरित भागीदारी, समुद्री सहयोग, स्वास्थ्य और चिकित्सा, अंतरिक्ष सहयोग, रेलवे संपर्क, समुद्र विज्ञान, आपदा प्रबंधन और मत्स्य पालन के क्षेत्र शामिल हैं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच हुई बातचीत के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। एक प्रेस विज्ञप्ति में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बांग्लादेश भारत की पड़ोसी प्रथम और एक्ट ईस्ट नीति का आधार स्तंभ है। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में दोनों देशों ने मिलकर जनकल्याण की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा किया है।
बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, विजन सागर और इंडो पैसिफिक विजन के संगम पर स्थित है। पिछले एक ही वर्ष में हमने साथ मिलकर लोक कल्याण के अनेक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी पर दुनिया की सबसे लंबी नौका यात्रा के अलावा पाइपलाइन का निर्माण भी सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश के लोगों के लिए चिकित्सा उपचार के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करेगा। श्री मोदी ने कहा कि रंगपुर में एक नया सहायक उच्चायोग खोलने का भी निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि दोनों देश अब डिजिटल और ऊर्जा कनेक्टिविटी पर और अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों पक्ष अपने आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत शुरू करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने 1996 की गंगा जल संधि के नवीनीकरण पर तकनीकी स्तर की बातचीत शुरू करने का फैसला किया है। श्री मोदी ने कहा कि बांग्लादेश में तीस्ता नदी के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक तकनीकी टीम जल्द ही बांग्लादेश का दौरा करेगी।
54 साझा नदियां भारत और बांग्लादेश को जोड़ती हैं। फ्लड मैनेजमेंट, अर्ली वार्निंग, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स पर हम सहयोग करते आए हैं। हमने 1996 के गंगा रिवर ट्रीटी के रिन्यूअल के लिए टेक्निकल स्तर पर बातचीत शुरू करने का निर्णय लिया है। बांग्लादेश में तीस्ता नदी के संरक्षण एवं प्रबंधन पर बातचीत के लिए शीघ्र ही एक टेक्निकल टीम बांग्लादेश का दौरा करेगी।
संयुक्त प्रेस वक्तव्य में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने भारत को एक विश्वसनीय मित्र और क्षेत्रीय भागीदार बताया। उन्होंने दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बांग्लादेश आने का निमंत्रण भी दिया। इससे पहले आज सुबह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में शेख हसीना का औपचारिक स्वागत किया गया। बाद में शेख हसीना ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगे। वे कल भारत की दो दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व चर्चा की। बैठक में गोवा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम के मुख्यमंत्री तथा बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव टीवी सोमनाथन और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। कल वित्त मंत्री ने किसान संघों के प्रतिनिधियों तथा कृषि अर्थशास्त्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श किया था। इससे पहले वे वित्तीय और पूंजी बाजार क्षेत्र के प्रमुख विशेषज्ञों, उद्योगपतियों और औद्योगिक संघों के साथ साथ प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ भी इसी तरह का परामर्श कर चुकी हैं। वित्त मंत्री आज नई दिल्ली में 53वीं जीएसटी परिषद बैठक की अध्यक्षता करेंगी। नई सरकार के गठन के बाद जीएसटी परिषद की यह पहली बैठक है। परिषद की आखिरी बैठक पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को हुई थी। इस दौरान परिषद ने कई निर्णय लिए थे। जीएसटी परिषद ने प्रस्तावित जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की शर्तों में पात्रता और आयु के संबंध में संशोधन की सिफारिश की थी। परिषद ने मोटे अनाज के आटे से तैयार खाद्य सामग्री पर भी शून्य दर की सिफारिश की थी। परिषद ने गुड़ पर जीएसटी कम करने का भी निर्णय लिया था, जिससे गन्ना किसानों को बकाया राशि के तेजी से भुगतान के लिए राहत मिले और पशु चारा निर्माण की लागत में कमी आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फास्टैग इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम FTITTP का उद्घाटन करेंगे। ये भारतीय नागरिकों और भारत के विदेशी नागरिकों के कार्ड धारकों के लिए सरकार द्वारा बनाई गई एक पहल है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए पात्र व्यक्तियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और अन्य आवश्यक जानकारी के साथ अपना बायोमेट्रिक्स जमा कराना होगा। आवश्यक सत्यापन और पात्रता की पुष्टि के बाद FTI के तहत पंजीकरण पूरा किया जाएगा। प्रक्रिया शुल्क का भुगतान करने के बाद आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा। FTITTP का लक्ष्य यात्रा अनुभव में क्रांतिकारी बदलाव लाना और यात्रा को तेज, आसान तथा अधिक सुरक्षित बनाना है। केंद्र ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए कड़ा कानून बनाया है। इसमें दोषियों को अधिकतम 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। आधिकारिक अधिसूचना में कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि ये प्रावधान आज से लागू हो जाएंगे। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम विधेयक में धोखाधड़ी रोकने के लिए न्यूनतम 3 से 5 साल की कैद का प्रावधान रखा गया है। इस वर्ष की संयुक्त CSIR UGC नेट परीक्षा अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण स्थगित कर दी गई है। ये परीक्षा मंगलवार से बृहस्पतिवार के बीच होनी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा है कि इसके आयोजन के लिए संशोधित कार्यक्रम आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से बाद में घोषित किया जाएगा। NTA ने कहा है कि किसी भी प्रश्न या स्पष्टीकरण के लिए अभ्यर्थी NTA हेल्प डेस्क पर कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर है 011-4075-9000 और 011-6922-7700। इसके अलावा NTA से csirnet@nta.ac.in पर मेल करके लिखित जानकारी भी ली जा सकती है। तमिलनाडु में कल्ला कुरिची जहरीली शराब त्रासदी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन से अवैध शराब बनाने में शामिल लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक के सदस्यों ने आज इस पर तत्काल चर्चा की मांग करते हुए राज्य विधानसभा से वॉकआउट किया। अध्यक्ष अप्पावो ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठा रहा है। प्रदेश भाजपा ने तमिलनाडु में जगह जगह सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले चार दिन के दौरान केरल, कर्नाटक और गोवा में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। साथ ही गुजरात, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पुदुचेरी में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज तथा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में अगले पांच दिन में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले चार दिन के दौरान पश्चिम बंगाल में गंगा के पास, बिहार, झारखंड, ओडिशा और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में बिजली चमकने और गरज तथा तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में इस महीने की 24 तारीख तक भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहने का अनुमान है। विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक सोमा सेन ने बताया कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में बीते दो दिन में भीषण गर्मी से राहत मिली है, वहीं अगले दो दिन में तापमान बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम, परनीत कौर और अदिति स्वामी ने तुर्की में अंताल्या तीरंदाजी विश्व कप 2024 में कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय महिला टीम ने आज एस्टोनिया को 232-229 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने इस सीजन में क्लीन स्वीप पूरा किया है और कंपाउंड टीम स्पर्धा में विश्व कप के सभी तीन स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 में आज शाम एंटीगुआ के नॉर्थ साउंड के सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में सुपर 8 मुकाबलों में भारत तथा बांग्लादेश का मैच होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा।
दिल में है बस जीत का जज्बा, देश का मान बढ़ाना है।
भारतीय टीम आज शाम सुपर 8 के दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश से मुकाबला करेगी। इस मुकाबले में जीत के साथ भारत सेमीफाइनल के और करीब आ जाएगा। टीम ने अपने पहले सुपर 8 मुकाबले में बारबाडोस के किसिंगटन ओवल में अफगानिस्तान को 47 रन से हराया था। दूसरी ओर बांग्लादेश को कल ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम के खिलाफ डीएलएस प्रणाली के तहत 28 रन से हार का सामना करना पड़ा था। आज का मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाले मुकाबले से पहले अंतिम चार में जगह पक्की करने के लिए प्रयास कर रहा है, जबकि एक और हार से टूर्नामेंट में बांग्लादेश का सफर खत्म हो जाएगा। आकाशवाणी इस मैच की लाइव कमेंट्री करेगा। इससे पहले दिन में मेजबान वेस्टइंडीज ने अमेरिका को 9 विकेट से हरा दिया था। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अभिषेक कपिल।
ओडिशा में स्थित पुरी श्री मंदिर में भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहनों की स्नान यात्रा का अनुष्ठान आज से शुरू हो गया है। दाता सेवकों ने सुबह जय जगन्नाथ के मंत्रोच्चार के बीच एक पहंडी जुलूस के रूप में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा, सुदर्शन और मदन मोहन को मुख्य मंदिर के गर्भगृह में रत्न सिंहासन से बाहर निकाला। भगवान को मंदिर के बाहरी परिसर में स्थान वेदी पर ले जाया गया। पुजारियों ने अनुष्ठान से पहले मंदिर परिसर के अंदर स्थित पवित्र कुएं के जल से अभिषेक किया। इस कुएं को स्वर्ण कुआं भी कहा जाता है। असम के कामाख्या मंदिर में प्रसिद्ध अंबुबाची मेला आज से शुरू हो गया है। इसका समापन इस महीने की 26 तारीख को होगा। मेले में लाखों श्रद्धालु पहुंचे हैं। त्योहार के दौरान कामाख्या मंदिर के द्वार बंद रहेंगे, लेकिन 25 तारीख की रात 9:08 पर फिर से खोल दिए जाएंगे। कामरूप मेट्रो जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव MIFF 2024 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के उत्कृष्ट प्रतिभा प्रदर्शन के साथ कल रात सम्पन्न हो गया। महोत्सव के निदेशक प्रथुल कुमार ने बताया कि MIFF के इस संस्करण में प्रतिनिधियों और फिल्म पंजीकरण की संख्या सबसे अधिक रही। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से वार्ता की। आपसी सहयोग बढ़ाने के कई समझौतों पर हस्ताक्षर। वित्त मंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श किया। जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक आज नई दिल्ली में होगी। मौसम विभाग का अगले चार दिन में केरल, कर्नाटक और गोवा में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी की आशंका। तुर्की के अंताल्या में तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत की ज्योति सुरेखा वर्णम, परनीत कौर और आदित्य स्वामी ने कंपाउंड टीम का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।